प्रिय मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 28 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन प्रिय साथियों के नाम हैं सुधीर प्रजापति, आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उषा रानी, आप कैथल हरियाणा से हैं, प्रदीप कुमार बेहवाल, आप मुंबई से हैं, शैलेंद्र सिंह रातनु, आप जयपुर से हैं और सुशील मौर्य, आप इलाहाबाद से हैं। तो सुधीर, उषा, प्रदीप, शैलेंद्र और सुशील, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। आप लोगों ने न्यूज सुनी है और न्यूज सुनने के बाद शायद आप को भी थोड़ी सी इस बात को लेकर निराशा हुई हो, या हो सकता है कि आप खुश भी हुए हों कि यार आज न्यूज में कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं जिसके बारे में सोचना है, जिसके बारे में कुछ नोट करना है, जिसके रेफरेंसेस देखने हैं। आज तो मजा आ गया, यानी कि आज अगर दिमाग पर कोई दबाव नहीं पड़ा तो मजा आ गया। मित्रों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। और केवल यही नहीं, आज का दिन तो इस मायने में भी थोड़ा सा विचित्र सा दिन है कि जब मैं अखबार उलट रहा था तो अखबार में भी ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ मिला नहीं जो मैं आप लोगों को एक प्रेस क्लिपिंग्स के रूप में प्रोवाइड कर सकूं। फिर भी मैं बिल्कुल नागा ना जाए तो 2-3 क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और वो अच्छे ही क्लिपिंग्स है। मतलब ये मत समझिएगा कि केवल खाना पूर्ति करने के लिए मैं वो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उनकी अपनी उपयोगिता है, उनकी अपनी अहमियत है, मैं उसी लिहाज से ही आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो क्या ऐसा होता है कि जब न्यूज में कुछ खास न हो तो अखबारों में भी कुछ खास नहीं होता है? मित्रों, ऐसा नहीं होता है। सामान्य तौर पर तो आप कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर न्यूज में कुछ नहीं है तो अखबार भी कहां से होंगे? अखबार तो भरे होंगे, न्यूज होगी, लेकिन सिविल सर्विस के लायक नहीं होंगे। ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स की बातें होती हैं, आर्टिकल्स तो पिछले इश्यूज पर भी आते रहते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा संयोग रहा कि मतलब इस तरह के मुझे आर्टिकल्स मिले नहीं जो मैं आपको पढ़ने के लिए दूं। हां, दोहराने के लिए, तहराने के लिए अगर मैं काट करके आपको दे देता तो मुझे लगता है कि आपके साथ मैं ज्यादा न्याय नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक न्यूज थी जिसको लेकर आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहूंगा। और दोस्तों, वह न्यूज थी एनजीओ को लेकर। आपने खबर सुनी कि हमारे जो एनजीओज हैं, जिसको हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में गैर सरकारी संगठन उनका नाम है, नॉन यानी कि गैर गवर्नमेंटल सरकारी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, हालांकि गैर सरकारी संगठन के नाम से ये पॉपुलर नहीं है, अब ये एनजीओ के नाम से ये संस्थाएं पॉपुलर हैं कि उसमें से बहुत से लगभग 20,000 संस्थाओं के जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिए गए हैं और मना कर दिया गया है कि वो विदेशों से अब कोई पैसा नहीं ले सकेंगे। इस तरह की एक खबर थी। चलिए, हम खबर पर नहीं जाते, मैं आज आपसे इसी बहाने एनजीओ पर बात करना चाहूंगा और इसलिए भी करना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने सिविल सर्विस के सिलेबस को देखें, खासकर मेन एग्जामिनेशन के, तो उसका जो सेकेंड पेपर है आपका, जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, उसमें बकायदे एनजीओ, सिविक सोसाइटीज, चैरिटी, डोनर्स, ये उसमें मेंशन किए हुए हैं और स्पेशली अलग अलग मेंशन किए हैं। भले ही वो एक ही पॉइंट के अंतर्गत हो, लेकिन उसमें एनजीओ अलग से मेंशन किया है, सिविक सोसाइटी अलग से मेंशन किया हुआ है, डोनर्स, चैरिटी, ट्रस्ट, ये सब मेंशन किए हुए हैं। ये मैं नाम आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर हम इन्हें मिलाकर और एक शीर्षक देना चाहें तो ये सब ऑलमोस्ट एनजीओ के अंतर्गत आते हैं, एनजीओ के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन अगर आपके सिलेबस में उसे अलग अलग मेंशन कर रखा है तो आपको चाहिए कि इनमें जो अंतर है, सबके सब एनजीओ हैं, एनजीओ होने के बावजूद भी सब एक ही नहीं है। सबके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, काफी कुछ सीमा तक फंक्शंस भी अलग हो जाती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है वो भी अलग तरीके की होती है, काफी कुछ मिलने जुलने के बावजूद भी अलग होती है। या आप यूं कह लीजिए कि जैसे हम साइट्रस फ्रूट कह देते हैं तो साइट्रस फ्रूट में आपका संतरा भी है और साइट्रस फ्रूट में आपका नींबू भी है, लेकिन दोनों एक तो नहीं है। ठीक वही स्थिति इसमें भी है। तो पहली बात तो यह है कि आप सब जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताए, चाहे वो सिविक सोसाइटीज हैं, चाहे वो आपके ट्रस्ट हैं, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको आप कहते हैं, एनजीओज हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन तो इस पर डेफिनेटली आता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं एनजीओ पर अपनी बात शुरू करूं, पहले तो अपने उन सभी स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा जो मेरे पहले के स्टूडेंट रहे हैं कि उनको एनजीओ पर मैंने एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया था। शायद ये करीब साल भर पहले की बात होगी जब बहुत ज्यादा एनजीओ चर्चा में आए थे और कुछ विवादास्पद हो गए थे, तो उस समय मैंने प्रोवाइड किया था। तो प्लीज आप लोग उस स्पेशल ऑडियो को एक बार इस समय जरूर सुन लें। तो मित्रों, अब मैं आता हूं एनजीओ के ऊपर। मैं एनजीओ के परिभाषा और वो बताने नहीं जा रहा हूं, मैं इसका जो सोशल एस्पेक्ट है, जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है, उस पर ही आप लोगों से बात करूंगा ताकि आपके अंदर इसके बारे में एक समझ बन सके और इनफैक्ट एक क्रिटिकल जो विजन होता है, एक वैचारिक दृष्टिकोण, एक समीक्षात्मक वैचारिक दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा हो सके। दोस्तों, अगर हम सामान्य रूप से एनजीओ की बात करें तो हालांकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक सरकारी संगठन, कलेक्टेड सरकारी संगठन है, विभाग सरकारी संगठन है, दूसरे वो जो सरकार से परे हैं, सरकार से अलग है, तो एक सरकारी दूसरी गैर सरकारी। अगर हम अपने समाज के पृष्ठभूमि को देखें तो जिन्हें हम एक तरीके से समाज सेवी संस्थाएं कहते थे पुराने समय में, उन्हीं को ही आजकल आप गैर सरकारी संगठन कह सकते हैं, एनजीओ कह सकते हैं। लेकिन पहले के जो समाज सेवी संगठन थे वो एक अलग तरीके थे कि कोई भी व्यक्ति अपना खोल लिया और अपना काम कर रहा है। आज भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब हम एनजीओ कहते हैं तो वो प्योरली समाज सेवी संगठन उस तरह का नहीं रह जाता। यदि आप एनजीओ कहते हैं तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और जिसका आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पंजीकरण कराते हैं, है ना। बकायदे एनजीओ सरकारी तंत्र के में रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड यदि आप, ऐसा नहीं है कि आप बिना रजिस्टर्ड कराए कोई समाज सेवा का काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। लेकिन रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर होता यह है कि उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, आपको उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है और सरकार भी आपको अनुदान देती है। अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड हो गया तो सरकार आपको पैसा देगी। किस लिए पैसा देगी? क्योंकि जो एनजीओ होगा उसके कुछ उद्देश्य होंगे। उद्देश्य इस रूप में होंगे कि हम समाज में इस क्षेत्र में काम करेंगे। कोई पर्यावरण का काम करेगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, कोई हेल्थ के सेक्टर में काम करेगा, कोई स्वच्छता के सेक्टर में काम करेगा। तो इस तरीके से वो अपने उद्देश्य देते हैं कि हम इस उद्देश्य से इस एनजीओ की स्थापना कर रहे हैं। तो सरकार को जब जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि उसको लग रहा है कि नहीं, पेड़ लगाए जाने चाहिए, गांव में पेड़ लगाए जाने चाहिए, तो जिस क्षेत्र के गांव में पेड़ लगाए जाने हैं वहां के इससे जुड़े हुए, इस उद्देश्य से जुड़े हुए एनजीओ को पैसा दे देगी कि ठीक है, आप 1 लाख रुपए लो, आप 2 लाख रुपए लो, उनकी अपनी हैसियत के हिसाब से, और आप हमारे बिहाफ पर यहां पेड़ लगा दो। एक बात मान करके चलिए कि जो एनजीओ हैं वो अलाभकारी संस्थाएं मानी जाती हैं, मतलब वो कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, संस्थान नहीं है कि वो कोई लाभ के लिए कर रहे हैं, बेसिकली वो तो समाज के विकास के लिए कर रही है। दोस्तों, ये इसका एक पार्ट है, इसका चरित्र का पार्ट है। तो एक तो इसको सरकार से पैसा मिलता है और दूसरा इसको विदेशों से भी पैसा मिलता है, विदेशों से भी धन मिलता है, क्योंकि विदेशों के आपने बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे, जैसे बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन आप सुनते हैं, बिल गेट्स का फाउंडेशन है, वो बहुत ज्यादा पैसा देता है भारतीय एनजीओस को। इसी तरह से आपने और नाम सुना होगा फोर्ड फाउंडेशन, कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिला होगा, फोर्ड फाउंडेशन बहुत पैसा देता है एनजीओ को। तो हमारे अपने यहां के ही जो एनजीओ हैं उनको विदेशों से भी पैसा मिलता है और वो जिस उद्देश्य से मिलता है उस उद्देश्य को फिर वो समाज के बीच में जाकर के उस उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो एक सरकार से पैसा मिलता है और दूसरा उनको विदेशों से भी पैसा मिलता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भी देना चाहे तो वो दे सकता है। तो मित्रों, अब मैं इस बात पर आता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए कि सरकार पैसा दे रही है एनजीओ को, तो सरकार के अपने भी डिपार्टमेंट्स हैं। क्या पर्यावरण का डिपार्टमेंट सरकार का नहीं है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट सरकार का नहीं है, जिनकी हमने अभी चर्चा की है ना? सरकार के डिपार्टमेंट पर्यावरण का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है। सच पूछे तो जो भी काम किया जा रहा है उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास हैं। और सच पूछे तो जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वही अपने से रिलेटेड इश्यू पर अनुदान देती हैं। जैसे अगर एजुकेशन की बात हुई तो पता लगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसके लिए आपको अनुदान देगा। अगर कहीं पर्यावरण की बात हुई तो पर्यावरण मंत्रालय उसके लिए अनुदान देगा, जबकि उनके अपने विभाग भी हैं। तो फिर वो इनको क्यों दे रहा है? अब यहां थोड़ा सा आप समझ लीजिए मित्रों, यही सारा मामला आता है। हुआ क्या फ्रेंड्स कि आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर देश आजाद हुए, और आजाद होने के बाद उन देशों ने अपना विकास करना शुरू किया और ये जल्दी से विकास कर सके इसके लिए इंटरनेशनल कुछ एजेंसीज बनी, इसी तरह के फाउंडेशंस विदेशों में बने, यूएनओ जैसी संस्थाएं बनी और ये इन देशों की मदद करने लगे, जो पिछड़े हुए देश थे, जो विकासशील या अविकसित देश थे, इनकी मदद करने के लिए सामने आने लगे। ठीक है, ये देश अपनी तरफ से अभी अपना काम कर रहे थे। तो हुआ ये कि 20, 25, 30 साल के बाद इन देशों ने, जो पिछड़े हुए देश थे, जो विकासशील देश थे, ये अनुभव किया कि जो सरकारी तंत्र है वह उतना इफेक्टिव नहीं है। उनके अपने रीजंस थे, उनके अपने संसाधन की सीमाएं थी, ये कह लीजिए कि ह्यूमन पावर की अपनी सीमाएं थी, जो मानव संसाधन जो चाहिए थे वो उनके सीमित थे। कुछ जड़ताएं भी होती हैं जो ब्यूरोक्रेसी की, वो ब्यूरोक्रेसी की इनर्शिया थी, ब्यूरोक्रेसी का अपना भ्रष्टाचार था, उनके अपने काम करने का एक नौकरशाही का जो अंदाज होता है वो नौकरशाही अंदाज था। तो इसके कारण इनको लगा कि जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे हम एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फिर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के बाद न्यू मैनेजमेंट की तरफ आते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि हमारी जो दिशा है वो आदेश से आगे बढ़कर अब रिक्वेस्ट की तरफ पहुंच रही है। अब आप किसी को डंडा दिखा करके काम नहीं कर सकते। तो एक तरह से एनजीओस का उभरना कहीं न कहीं यूं मान करके आप चलिए कि सरकारी तंत्र की अपनी असफलता की भी घोषणा है कि सरकारी तंत्र अब इन कामों को करने लायक नहीं रह गया है। तो जो गैर सरकारी संगठन है, चूंकि वो अलाभकारी होते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो सरकार ने उनको बढ़ावा दिया कि ठीक है, चलिए हम ये जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है इसका फायदा उठाते हैं, इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, इनके उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं, तो इनसे ज्यादा मदद मिलेगी और इनको पैसा दो, बजाय इसके कि हम अपना ही डिपार्टमेंट खोलें, इनको पैसा दो। और वैसे भी देखिए, सरकार अगर डिपार्टमेंट खोलती है तो आपको मालूम है कि उसका 50-60-70% तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है, लोगों की सैलरी में चला जाएगा, बिल्डिंग में चला जाएगा, गाड़ी घोड़े के खर्चे में चला जाएगा, जबकि इनके साथ ऐसा कुछ है नहीं। तो सरकार ने एनजीओस को आगे किया और लगातार अब इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है मित्र, इसीलिए जो एनजीओस को सरकार अनुदान देती है, बकायदे उनका लेखा जोखा रखती है, उनको अपना हिसाब किताब देना पड़ता है सरकार को, चुनाव होते हैं, उनकी अपनी एक प्रणाली है, विदेशों से ये पैसा लेते हैं। अब हुआ क्या मित्रों कि इस बीच में पिछले लगभग 20-25 साल के दौरान, खासकर लिबरलाइजेशन के बाद, ऐसे हमारे यहां एनजीओज हुए जो अपने में एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह, बड़े बड़े कारपोरेट की तरह है, बहुत बड़े बड़े एनजीओ हैं और इनको विदेशों से भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो लोग इन एनजीओ का जो इस्तेमाल है वो लॉबिंग की तरह करने लगे। लॉबिंग की तरह करने का मतलब है, जैसे कुछ घटनाएं आपने सुनी होंगी जो एनजीओ की आलोचना में कही जाती है, कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने किया कि यहां एक फैक्ट्री लगनी है, एक आदिवासी इलाका है और बहुत पिछड़ा इलाका है और यहां फैक्ट्री लगनी है। अब फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ जंगल काटने पड़ेंगे, कुछ आदिवासियों को, लोगों को वहां जो रहने वाले उनको विस्थापित करना पड़ेगा, और सरकार ये मान रही है कि अगर ये फैक्ट्री लग गई तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उचित रूप से दोहन भी होगा और इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, ये सरकार की सोच है। लेकिन जो विदेशी शक्तियां हैं मित्रों, विदेशी शक्तियों का अपना एक अपनी एक अलग सोच होती है, वो नहीं चाहती हैं कि ये विकास करे, या कह लीजिए कि कोई दूसरा वर्ग नहीं चाहता है कि यहां ऐसा कुछ हो, जैसे नक्सलाइट नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र का विकास हो, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो अब वो क्या करेंगे कि सीधे सीधे तो मना कर नहीं सकते, सीधे सीधे मना करने पर तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो अब क्या करते हैं कि वो इस तरह के एनजीओ का सहारा लेते हैं, उनकी फंडिंग करना शुरू करते हैं कि आप पैसा लीजिए और आप हमारे बिहाफ पर यहां हड़ताल कीजिए, यहां धरना दीजिए और अखबारों में लेख लिखवाइए और कोर्ट में चले जाइए, पीएलआई दाखिल कर दीजिए। तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं और उससे पता लगता है कि देश के विकास की गति रुक जाती है और चीजें उलझ जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी, लोगों ने महसूस भी किया। जैसे बड़े बांधों का विरोध के पीछे कहा गया कि इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश में सिंचाई की इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध हो या आर्थिक रूप से या इतना आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये एनजीओ का एक तरीके से वह निगेटिव पक्ष है जिसको लेकर के एनजीओ की कार्यप्रणाली की आलोचना की जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है मित्रों कि सभी एनजीओ ऐसा कर रहे हैं, ये भी मान करके चले कि सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। सच पूछे तो दूर दराज के गांव में एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अगर गांव में रह रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसे एनजीओ हैं जो बहुत ही समर्पित भाव से इस काम में लगे हुए हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसीलिए ये मान करके चले कि कुछ लोगों की वजह से आप बाकी लोगों को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर जरूरत महसूस की जा रही है कि एनजीओ के रूल्स रेगुलेशन को का बकायदे उनसे पालन कराया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे एनजीओज हैं भारत में जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, अनुदान भी लेते हैं लेकिन वह अपना हिसाब किताब नहीं देते कि उस पैसे को उन्होंने कैसे खर्च किया। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन लागू करने की बात है उनको सही तरीके से लागू कराया जाए। ये तो मानकर चलिए मित्रों कि अब हम जिस एज में एंटर कर गए, जिस स्टेज पर आ गए हैं, तो हम एनजीओज को खत्म तो नहीं कर सकते, जरूरत भी नहीं है, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। मतलब रेगुलेशन इस तरीके के नहीं कि ये सरकारी तंत्र ही बन जाए, लेकिन खासकर जो पैसे की जो हेराफेरी होती है और उसको लोग अपना अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, उन पर निगरानी रखे जाने की जरूरत तो है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ये मैंने आपको थोड़ा सा एनजीओ के बारे में एक दृष्टि देने की कोशिश की है, और चूंकि आज बताने के लिए कुछ दूसरा बहुत था भी नहीं, तो इसीलिए एक टॉपिक पर ही आज हम लोगों ने विस्तार से बातें की हैं। तो मित्रों, अब न्यूज एनालिसिस पूरा होता है और मैं अब आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सौम्या अफरोज उड़ीसा से हैं, रोशनी बिहार से, शुभम गुप्ता, शुभम टोपनावर, ज्ञान रंजन, सोनू अग्रवाल, कपिल कुमार सैनी, आनंद रावत देहरादून से, मोहित वर्मा चुरू राजस्थान से, सतीश सिंह इलाहाबाद से, प्रिया वर्मा, धर्मपाल चौधरी और अतुल भटोरे खरगोन मध्य प्रदेश से। तो मित्रों, आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।